उस महापुरुष के शरीर का रंग पकी हुई नारंगी कासा था। चेहरा न तो लंबा था और न गोल, आजानुबाहें, काली आँखें और विशाल फाल भाग। उसकी आयु 20 बरस की रही होगी। नाम था धर्माराव। धर्माराव रामेश्वर शास्त्री का बेटा था। रामेश्वर शास्त्री नागेश्वर शास्त्री की 5वीं पीढ़ी वाले पोते थे। कृष्णम नायडू जिन दिनों जमींदार थे, रामेश्वर शास्त्री उनके दीवान थे। लेकिन जमींदार की ख्याति से अधिक दीवान जी की ख्याति ही दसों दिशाओं में फैली। रामेश्वर शास्त्री ने श्रुति स्मृतियों का अच्छा अध्ययन किया था। कुछ कर्मठ भी थे। उन्होंने यज्ञ याग आदि नहीं किया था, परंतु वैश्य देव अवश्य किया करते और अपने घर में होमाग्नि को बुझने न देते। विचित्र व्यक्ति थे वे। उन्होंने चारों वर्णों की अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र कन्याओं से 4 विवाह किए और 4 पत्नियों से संतान पाई। इनके अतिरिक्त रत्नागिरी नामक एक वेश्या उनकी रखैल भी थी। उससे भी रामेश्वर शास्त्री के संतान हुई। लोगों की दृष्टि में रामेश्वर शास्त्री के अनेक विवाह और उनकी कामुकता अवश्य भर्त्सना का हेतु बनी, परंतु उनकी उदारता तथा अन्य सद्गुणों के समुद्र में वह भर्त्सना डूब सी गई। रामेश्वर शास्त्री निरंतर अन्नदान किया करते थे। शिवी, दधीची, कर्ण, रामेश्वर शास्त्री, यही मानो महान दाताओं की परंपरा थी। सारे परगने में रामेश्वर शास्त्री से अपरिचित कोई न था। ऐसा भी कोई न था जो उनकी उदारता से लाभान्वित न हुआ हो और साथ ही उनका गुणगान न करता हो। नागेश्वर स्वामी के मंदिर के ध्वजस्तंभ पर चढ़ाई गई पीतली चादर जब खराब हो गई, तब रामेश्वर शास्त्री ने उसके स्थान पर नई सोने की चादर बनवाई। वेणुगोपाल स्वामी के लिए भी सोने का कवच बनवाया। सत्यभामा देवी के लिए मूल्यवान नथ बनवाई जिसमें माणिक जड़ा हुआ था। उसे बनवाने में 1000 रुपये खर्च हुए। नागेश्वर स्वामी के मंदिर में वीरभद्र की मूर्ति के लिए सोने की मूछें, आँखें और बीच में माणिक की जड़ी हुई बिंदी भी उन्होंने बनवाई। वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर में शमी वृक्ष के पास पत्थर का चबूतरा बनवाया। मंदिर की तलैया में संगमरमर की नई सीढ़ियाँ भी बनवाईं। यहाँ तक कि दोनों मंदिरों में कराए गए निर्माण पर ही उनकी आधी जायदाद खर्च हो गई। रामेश्वर शास्त्री निर्धनों के भगवान थे। पहले जब 12 बरस का अकाल पड़ा, तब लोग भूखों मरने लगे। जमींदार के धान्यागार में 600 खंडी धान्य था। खंडी धान्य के माप का एक गरिष्ठ प्रमाण है। उसकी कौन रखवाली करता? लोग झुंड के झुंड आ आकर धान्य लूटने लगे। रामेश्वर शास्त्री को धान्यागार की रक्षा का काम सौंपा गया। वे धनुर्विद्या में निष्णात थे। तीर कमान लेकर धान्यागार के पास जा डटे। आस पास के 5-6 देहातों से झुंड के झुंड लोग आए, चुपचाप दूर खड़े हुए। पास आने का किसी को साहस न होता था। उन्हें कुछ न सूझा। कोई एक पग भी आगे बढ़ता तो शास्त्री जी के तीर का शिकार होना अवश्यम भावी था। अंत में उनमें से कुछ मुखिया लोग रामेश्वर शास्त्री के पास आए और कहने लगे, महाराज, आज हमारे प्राण आपकी मुट्ठी में है। भूखों मरना क्या और आपके तीरों से मरना क्या, हमारे भाग्य में तो मरना ही बदा है। साथ साथ हमारे बच्चे और स्त्रियां भी हैं। आप कृपा करें तो जिएंगे, नहीं तो मरेंगे। उनका दीनालाप सुनकर शास्त्री जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने धान्यागार का एक भाग लोगों को दिखाया। लोग उस पर टूट पड़े और एक एक व्यक्ति 10-12 दिनों का रातव उठा ले गया। इसके बाद जमींदार ने शास्त्री जी से जवाब तलब किया। शास्त्री जी ने कहा, लगभग 1000 लोग आए और अनाज मांगने लगे। मैं न देता तो पता नहीं कितने लोग मर जाते। वह सारा पाप आप पर होता या मुझ पर। महाराज, यदि आप नाराज होते हैं तो उस अनाज के दाम मैं स्वयं अदा करूँगा। यह जवाब सुनकर जमींदार चुप हो गए। इसी तरह की असंख्य कथाएँ प्रचलित थीं। उस इलाके में शास्त्री जी का बहुत सम्मान होता था। वे बड़े भाग्यशाली थे। जब तक वे जीवित रहे, यह कहना कठिन था कि सचमुच जमींदार कृष्णम नायडू थे या रामेश्वर शास्त्री। एक बार जमींदार और रामेश्वर शास्त्री में किसी बात पर मनमुटाव क्या हो गया, 6 बरस तक दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। शास्त्री जी ने कोठी की तरफ फटक कर नहीं देखा। 6 बरस बाद वेणुगोपाल स्वामी के संप्रोक्षण का अवसर आया। मंदिर की मरम्मत की गई। जमींदार साहब ने कोई कसर उठा न रखी। संप्रोक्षण का दिन भी आया। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। सांग अध्ययन करने वाले शास्त्रवेत्ता, गायक, कविगण, वादक, वेश्याएं और दर्शक, इन सबसे मंदिर खचाखच भर गया। मुहूर्त करीब आ रहा था। पूजा संकल्प प्रारंभ करने के लिए पुरोहित जमींदार की अनुमति की प्रतीक्षा कर रहा था। जमींदार की अनुमति नहीं मिली। मुहूर्त टला जा रहा था। पुरोहित जल्दी कर रहा था पर जमींदार सिर नहीं उठा पाते थे। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था। अंत में पुजारी ने साहस करके जमींदार से पूछा, महाराज मुहूर्त टला जा रहा है, संकल्प प्रारंभ कर दें। कृष्णम नायडू ने बिना सिर उठाए ही उत्तर दिया, यहाँ किसे पूछते हो? जो अनुमति दे सकते हैं वे रामेश्वर शास्त्री तो अकड़ कर घर बैठे हैं, जाकर उन्हें बुला लाओ। यह सुनते ही सब लोग आश्चर्यचकित हुए। सबको पता था कि 6 बरस से दोनों में बातचीत तक बंद है। लोग रामेश्वर शास्त्री को बुलाने गए पर वे आए नहीं। बोले, बुलाने वाले तुम कौन होते हो? बुलाना जिनका कर्तव्य है वे बुलाएंगे, तभी जाऊँगा। जमींदार को जब यह उत्तर मिला तो वे स्वयं जाकर शास्त्री जी को बुला लाए। उनके परस्पर प्रेम का ढंग ही निराला था। जमींदार ने जाकर शास्त्री जी से कहा, क्यों जी अकड़ कर बैठे हो? 6 बरस तक अकड़ते रहे, अब और कब तक अकड़ोगे? चले आओ भी, मुहूर्त टला जा रहा है। और शास्त्री जी मंद हास करते हुए उठकर चले आए। ऐसी थी उनकी मैत्री। राजा जितने उदार थे शास्त्री जी उतना ही आत्मसम्मान रखते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि उनके शरीर मात्र भिन्न हैं। मुसीबतों ने हरिश्चंद्र जैसों को भी नहीं छोड़ा। उसी प्रकार रामेश्वर शास्त्री के अंतिम दिन भी बड़े कष्ट में बीते। सामान्यतया भाग्यवान असल में वे हैं जो प्रारंभ में कष्ट सहकर भी जीवन के अंतिम दिनों में सुख पाते हों। पहले सुख का उपभोग करके अंत में दुर्दिन को प्राप्त होने वाले सचमुच अभागे ही होते हैं। शास्त्री जी की दान वृत्ति के फलस्वरूप उनकी सारी जायदाद ग्रीष्म में सूखते तालाब की तरह धीरे धीरे सूखती गई। एक जमाना वह था जब रामेश्वर शास्त्री के घर में कितने लोग भोजन करते हैं इनका किसी को पता न रहता था। कोई नहीं जानता था कि कौन किस काम से आया है, यह प्रश्न पूछना भी निषिद्ध था। आगंतुकों के लिए सारी सुविधाएं वहां थी। भोजन के अलावा लोग दुकान पर चले जाते और शास्त्री जी के नाम पर उधार लिखवाकर यथेच्छ सामान ले लेते। अंत में यह उधार खाता हजारों तक पहुंचा। खर्च बहुत बढ़ गया और शास्त्री जी पर कर्ज चढ़ने लगा। कुछ समय बाद उन्होंने अपनी कुछ जमीन बेच डाली। अंत में जो जायदाद बची उसके मूल्य से कहीं अधिक कर्ज चढ़ा हुआ पाया गया। जायदाद खरीदने को भी कोई तैयार नहीं हुआ। इसके बावजूद शास्त्री जी के घर में अन्नदान यथापूर्व चल रहा था। कुछ समय बाद वह न चल सका। धीरे धीरे लोग वहां से खिसकने लगे। शास्त्री जी के हाथ में फूटी कौड़ी न रही। कर्जदारों का दबाव बहुत बढ़ गया। जमींदार ने 1-2 बार सहायता की पर वे भी बूढ़े हो चले थे। उनके पुत्र रंगाराव जमींदारी के कामकाज खुद संभालने लगे थे। रंगाराव अपने पिता की भांति उदार नहीं थे। हर बात में जमा और खर्च की मीजान देखा करते थे। रामेश्वर शास्त्री से उन्हें उतनी आत्मीयता न थी, इसलिए शास्त्री जी को कोठी से लगातार मिलने वाली सहायता भी अब बंद हो गई। शास्त्री जी पर वारंट जारी हुआ। सिर छिपाने को जगह न रही। योग्य कीमत मिलती तो बची हुई जायदाद से कर्ज अदा हो सकता था, लेकिन सही कीमत मिलती कहाँ? चतुराई सचमुच कर्जदारों की होती है, जो पहले तो कर्ज देते हैं जायदाद देखकर और अंत में जायदाद को छोड़ वे आदमी को तंग करने लगते हैं। आदमी के शरीर की हड्डियां रत्न थोड़े ही हैं, उसके रत्न से सोना थोड़े ही बनता है। उसके पास धन कैसे आएगा? उस बेचारे को तंग करने का क्या प्रयोजन है? रामेश्वर शास्त्री ने किसी कर्जदार पर अन्याय नहीं किया, जायदाद की चोरी नहीं की। उनके कई रिश्तेदारों ने सलाह दी कि कुछ जायदाद पत्नी के नाम कर दो, पर उन्होंने कहा, मेरी जीभ काट डालो तब भी मैं ऐसा नहीं करूँगा। कर्जदारों में एक भी ऐसा न था जिस पर शास्त्री जी के उपकार न हो। सबसे बड़ा कर्जदार नागन्ना सेठी था। पिछले दिनों एक बार सेठी ने जमींदार का नाम लेकर कुछ गाली गलौज की थी। यह बात कृष्णम नायडू तक पहुंची। नायडू ने किसी काम के बहाने सेठी को कोठी के भीतर बुलाया, जहां कोड़ों से उसकी मरम्मत का प्रबंध किया गया था। सेठी का परम सौभाग्य था कि ठीक उसी समय रामेश्वर शास्त्री कोठी पर पहुंचे। जमींदार का उद्देश्य उन्होंने ताड़ लिया और तुरंत सेठी को छुड़ाकर जमींदार को खरी खरी सुनाई। इस नागन्ना शेट्टी का बाप उत्तर भारत का निवासी था। वहाँ आजीविका न मिलने के कारण सुबन्ना पेठ आया था। रामेश्वर शास्त्री के पिता ने उसका आदर किया और उसको कुछ पूंजी देकर व्यापार शुरू करवाया था। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ती गई और आज वह लखपति बनकर रामेश्वर शास्त्री को कर्ज देने लगा। परंतु जब रामेश्वर शास्त्री को बुरे दिन देखने पड़े तब शेट्टी को शास्त्री जी का या उनके पिता का किया हुआ कोई उपकार याद नहीं आया। उल्टे शेट्टी ने प्रचार करना शुरू किया कि रामेश्वर शास्त्री उसका सारा पैसा खा गए हैं। साथ ही वह शास्त्री जी पर वारंट लाकर तामील करवाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। एक और कर्जदार था श्री रामूलू। यह जात का कम्मा था। कम्मा आंध्र प्रांत की वरिष्ठ जातियों में से एक जाति है। 40 बरस पहले वह भूखों मरता सुवन्नापेच आया था। वहाँ के किसानों के पास भगेले का काम करता हुआ किसी तरह जी जा रहा था। भगेला खेत में काम करने वाले नौकर को कहते हैं। उसकी स्थिति देखकर रामेश्वर शास्त्री तरस खाकर कहने लगे, भैया बराबरी वालों में तुम यह नीच काम क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें 10 एकड़ जमीन दूंगा, साझे में खेती करो। भगवान ने चाहा तो इसी से तुम्हारा निर्वाह हो जाएगा। रामेश्वर शास्त्री की दया से श्री रामूलू के भाग खुले और खेती में दिन प्रतिदिन अधिक उपज होती गई। धीरे धीरे उसने पैसा इकट्ठा किया और ब्याह के समय दहेज में ससुराल वालों का दिया हुआ पैसा ब्याज पर देने लगा। उसकी पत्नी भी दूध दही आदि बेचकर धन इकट्ठा करने लगी। होते होते श्री रामूलू 10,000 का मालिक बन गया। शास्त्री जी को उसने कुछ कर्ज दिया। आज शास्त्री जी की फजीहत करने वालों में से ये महाशय सबसे आगे थे। सचमुच सुबन्ना पेठ में ऐसा कोई व्यक्ति न था जिसने रामेश्वर शास्त्री का नमक न खाया हो, पर आज उन्हें कष्टों से बचा लेने वाला कोई न रहा। वह था पुराने और नए युगों के बीच का संधिकाल। पुराने रीति रिवाज समाप्त हो रहे थे। नई पढ़ाई सुबन्ना पेठ में प्रवेश कर चुकी थी। उसके फलस्वरूप स्वतंत्रता और व्यक्ति गौरव का दौर दौरा चल पड़ा। प्राचीन मान मर्यादाओं की अवहेलना होने लगी। रामेश्वर शास्त्री 16 आने प्राचीन युग के थे। वे गांव के सभी पुरुषों को क्यों रे और सभी स्त्रियों को क्यों री कहकर संबोधित करते थे। ऐसा कोई घर न था जो उनके प्रवेश के लिए निषिद्ध हो। शास्त्री जी सबसे एक सा प्रेम करते थे। जमींदार को भी तुम कहकर संबोधित करते, जमींदार के लड़के को क्यों रे भैया कहते। जब तक शास्त्री जी की जायदाद बनी रही उनका यह संबोधन किसी को नहीं अखरा, लेकिन आर्थिक स्थिति का बिगड़ना शुरू होते ही लोग उनके इस संबोधन पर झल्लाने लगे। शास्त्री जी की उदारता भी सुमन्नापेट के लोगों को अवगुण सी प्रतीत होने लगी। जमींदार साहब के पुत्र रंगा राव को शास्त्री जी का यह संबोधन बहुत बुरा लगा। शास्त्री जी पर रंगा राव के क्रोध का यह भी एक कारण बना। शास्त्री जी को यह ज्ञात न था वे बड़े स्वतंत्र स्वभाव के थे, पर बुरे दिनों के आते ही उनका स्वतंत्र स्वभाव लोगों को घमंड सा प्रतीत हुआ। समय की मार ऐसी ही होती है, बुरे दिनों में अच्छे से अच्छे कार्य भी के भी उल्टे अर्थ किए जाते हैं। रिश्तेदारों के बीच भी रामेश्वर शास्त्री ज्येष्ठ समझे जाते थे। क्या पांडित्य में और क्या व्यवहार कुशलता में उनके समान कोई न था। सभी रिश्तेदार थोड़ा बहुत उनसे लाभ उठा चुके थे। कोई निकट का रिश्तेदार, कोई दूर का, कोई सगा, कोई संबंधी, सभी लोग उनके घर पर अड्डा जमाकर पेट भर चुके थे। लेकिन दुर्भाग्य के दिन आए तो सबके सब रामेश्वर शास्त्री की आलोचना और उपेक्षा करने लगे। उनकी दृष्टि में अब शास्त्री जी की अपंडित थे, व्यवहार कुशल नहीं थे, दूरंदेश नहीं थे। शास्त्री जी के मामा के कई बेटे थे जो सबके सब शास्त्री जी के ही घर पले थे। असल में शास्त्री जी ने सभी के घरों में दीप जलाए थे, पर आज कोई उनके घर की ओर फटकता न था। रामेश्वर शास्त्री के साले का नाम गंगाधर सोमयाजी था। सोमयाजी वह होता है जिसने यज्ञ किया हो। यज्ञ करने के कारण ही उनका नाम सोमयाजी पड़ा था। उनके सारे पूर्वज आहिताग्नि थे, आहिताग्नि जो प्रतिदिन 3 बार हवन करता है। परंतु गंगाधर के पिता सोमन्ना केवल वैश्यदेव किया करते थे। वैश्यदेव वह होम होता है जो विश्व देवताओं के प्रत्यर्थ किया जाता है। सोमन्ना के समय उनके परिवार में भोजन के भी लाले पड़ गए थे। सोमन्ना का गांव रंगापुर सुबन्ना पेट के 3-4 मील पर था। एक दिन सोमन्ना दूर के किसी गांव से लौटते हुए सुबन्ना पेट से गुजर रहे थे। दिन बढ़ आया था। बेचारे ब्राह्मण को भूख लगी। सोचने लगे घर में तो सब्जी भी न होगी। रास्ते में पके हुए ज्वार के खेत में रामेश्वर शास्त्री मंच पर बैठे कुछ लिख रहे थे। सामन्ना ने उनसे पूछा, भैया तुम्हारे खेत से 2 ककड़ियाँ तोड़ लूँ? शास्त्री जी बोले, महाशय आप बड़े हैं, मैं खुद आपके लिए ककड़ियाँ तोड़ लाता हूँ। यह कहकर शास्त्री जी इतनी ककड़ियाँ तोड़ लाए कि बूढ़े सोमन्ना के लिए उन्हें ढोना मुश्किल हो गया। लड़के की भलमनसी देखकर सोमन्ना फूले न समाए। उनका गाँव, नाम, परिवार आदि सारा ब्यौरा जानकर बड़ी प्रसन्नता से घर लौटे। ककड़ियों की गठरी उतारते हुए पत्नी से बोले, लड़की के लिए वर ढूंढ कर लाया हूँ। पत्नी ने बड़ी आतुरता से पूछा, कौन है भला? सोमन्ना ने जवाब दिया, और कौन है, सुवन्ना पेठ के नारायण शास्त्री का बेटा है रामेश्वर शास्त्री जी। लड़का क्या है? मोती है, मोती। अच्छा पढ़ा लिखा है? और वाह, लिखता तो है बिल्कुल मोतियों की तरह है। मैंने उससे दो ककड़ियों की मांग की और उसने ककड़ियों से भरा एक टोकरा ही मेरे सिर पर रख दिया। सचमुच हमारी बेटी सावित्री बड़ी भाग्यवान है, सोने जैसा वर मिला है उसे। पत्नी थोड़ा उदास होकर बोली, तुम भी कैसी बात करते हो, वे कहाँ और हम कहाँ। हम गरीबों की लड़की से भला वे क्यों ब्याह करने लगे, बस करो ये बातें। तब सोमन्ना ने कहा, ऐसा क्यों सोचती हो, क्यों नहीं ब्याह करेंगे? हम धन में कम सही, पर इज्जत में हमारी थोड़ी ही कमी है। मैं रिश्ता जोड़ने जाऊं तो क्या इनकार करेंगे? यह कहकर सोमन्ना ने भोजन किया और उसी दिन नारायण शास्त्री के घर सुवन्ना पेठ जा पहुंचे। नारायण शास्त्री घर पर नहीं थे, छोटे भाई शंकर शास्त्री थे। शंकर शास्त्री सोमन्ना को देख 1 रुपया दक्षिणा देने लगे, लेकिन सोमन्ना ने अपने आने का उद्देश्य सुनाया। शंकर ने कहा, बड़े भैया तो गांव में है नहीं, आते ही आपको संदेश सुनाऊंगा, फिर आपको भी खबर कर दूंगा। यह कहकर शंकर शास्त्री ने सोमन्ना को विदा किया और स्वयं पंडित के यहाँ जाकर लग्न का मुहूर्त निश्चय करा लिए। मुहूर्त में केवल 10 दिन बाकी थे, इसीलिए शंकर शास्त्री ने ताबड़तोड़ सारी तैयारियां शुरू कर दी। दूसरे ही दिन ताड़बन से पत्ते मंगाए। घर की स्त्रियों में भी उत्साह आ गया, उनके भी काम काज शुरू हो गए। तीसरे दिन नारायण शास्त्री घर लौटे तो आंगन में ताड़ के पत्तों का ढेर दिखाई दिया। कारण पूछा तो पता चला कि रंगापुर में से सोमन्ना नामक एक ब्राह्मण आए थे, उनकी लड़की सावित्री का हमारे रामेश्वर से ब्याह निश्चित हुआ है। शंकर ने लग्न का मुहूर्त भी ठीक कर दिया है, केवल 8 दिन रह गए हैं। सारा हाल सुनकर नारायण शास्त्री ने भी स्वीकृति दे दी और विवाह की तैयारियां होने लगी। इस तरह रामेश्वर शास्त्री का विवाह हुआ। उन दिनों लोगों की भलमनसी भी कुछ ऐसी ही हुआ करती थी, धन दहेज की कोई बात नहीं, बस कुल और गोत्र से मतलब रहता था। विवाह के बाद सोमन्ना की गृहस्थी भी कुछ संभलने लगी। उनके पुत्र गंगाधर को कृष्णम नायडू ने कुछ जमीन इनाम में दी। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। गंगाधर ने यज्ञ भी किया, उनके प्रति गाँव के लोगों में आदर भाव बढ़ने लगा और वे गाँव के एक प्रतिष्ठित गृहस्थ हो गए। वास्तव में यह सारी प्रतिष्ठा रामेश्वर शास्त्री के नाता जोड़ने के कारण हुई थी, लेकिन आज गंगाधर रामेश्वर शास्त्री की ओर भूल कर भी नहीं देखते थे, उलटे लोगों से कहते, शास्त्री जी एकदम निकम्मे हैं, उन्होंने बच्चों के लिए कुछ नहीं रख छोड़ा। गंगाधर की कंजूसी और रामेश्वर शास्त्री का दातृत्व दोनों ही लोगों को मालूम थे, इसीलिए लोग मन ही मन गंगाधर की निंदा किया करते। होते होते नौबत यह आई कि शास्त्री जी का एक एक दिन बीतना मुश्किल हो गया। पत्नी और पुत्र के साथ शास्त्री जी को गंगाधर के घर जाकर रहना पड़ा। गंगाधर और उनकी पत्नी ने शास्त्री जी को कई असह्य उलाहने दिए, उन्हें बहुत हेय दृष्टि से देखा। यह देखते ही रामेश्वर शास्त्री को लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर चोट की हो। वे तिलमिला उठे, पर उपाय भी क्या था, कुछ दिन वहां रहकर सुवन्ना पेठ लौट आए। रामेश्वर शास्त्री के कई भतीजे थे, सब अपनी अपनी गृहस्थी जमकर चला रहे थे, लेकिन किसी ने भी गाढ़े समय शास्त्री जी की सहायता नहीं की। यहाँ तक कि शास्त्री जी की पत्नी, जिन्होंने आज तक कभी उनकी बात पर छू तक नहीं की थी, उन्होंने भी दुर्दिन में पति की अवहेलना शुरू कर दी। उन्हें दुख इस बात का हो रहा था कि पति ने बच्चों को कंगाल बना दिया। वह दुख कभी कभी पति के प्रति झल्लाहट के रूप में प्रकट होती थी। इस स्थिति में भी शास्त्री जी का पुराना सिलसिला ज्यों का त्यों बना रहा। उन दिनों शास्त्री जी के पास एक ही धोती और एक ही दुपट्टा था। एक दिन वे किसी मित्र से कुछ रुपया उधार मांगने निकले। रास्ते में एक बूढ़ा हरिजन उनसे कहने लगा, महाराज आपके भाग फिर गए हैं, मैं भी आपके साये में पलता था, आज मेरे भी बुरे दिन आए हैं, तन ढकने को भी कपड़ा नहीं है, बस यह काछा लगाकर घूम रहा हूँ। आप वृक्ष थे और हम पंछी, आज आप गिर गए हैं और हम इधर उधर बिखर गए हैं। बूढ़े की बात सुनते ही शास्त्री जी ने दुपट्टा पहन लिया और धोती उसे दे दी। धीरे धीरे सब कुछ सूना हो गया। ऐसा लगता था मानो दरिद्रता की देवी सिर पर टूट पड़ी हो और अपने 1000 हाथों और 5000 उंगलियों से शास्त्री जी के घर को चूर चूर किए डाल रही हो। अब रामेश्वर शास्त्री से कष्ट नहीं सहा जा रहा था। उस दिन शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। शास्त्री जी मंडप में बैठे थे। दूज के मनोरम चांद को, जो सूत की तरह बारीक दिखाई दे रहा था, शास्त्री जी ने सूत की भेंट चढ़ानी चाहिए। दूज के चांद का दर्शन करते समय अपने अंग वस्त्र से सूत निकालकर चढ़ाने की प्रथा है। पर उनके तन पर कोई कपड़ा न था। पहने हुए दुपट्टे से सूत न निकल पाया। अपनी इस असहायता पर शास्त्री जी को गहरी वेदना हुई। वे उसी तरह बड़ी देर तक बैठे रहे। सूत जैसी वह चंद्रकोर भी अदृश्य हो गई चारों तरफ। फिर गाढ़ा अंधेरा छा गया। शास्त्री जी के भी दुबले और जर्जर किंतु दीप्त शरीर में चमकती आंखों में अंधियारा घुसकर गहराई तक फैलने लगा। बड़ी देर तक तो किसी को पता भी न चला कि भगवान के कल्याण मंडप में रामेश्वर शास्त्री ने जीवन लीला समाप्त कर दी है। उनकी मौत के बाद अचानक उनकी महत्ता का लोगों को फिर से एहसास हो आया। आधी रात बीतने तक मंडप के पास लोगों की भीड़ जुट गई। इकट्ठे हुए लोगों के बीच शास्त्री जी की गाथाएं दोहराई जाने लगी। जिन लोगों पर शास्त्री जी के उपकार थे वे आंसू ही बहा रहे थे। पत्नी और पुत्र शास्त्री जी की मृत देह को घर ले गए। उनका परिवार बहुत विस्तृत था। बुरे दिनों में जिन्होंने फटक कर भी नहीं देखा था ऐसे अनेक सगे संबंधी कौओं की भांति इकट्ठे हुए। भोर होने तक सारा घर रिश्तेदारों से खचाखच भर गया। यह सब देख उस दिन धर्माराव की आंखें खुली। उसकी भी आयु उस समय कुल 16 वर्ष की थी। वह यह भी नहीं जानता था कि पिता की मृत्यु से उसका कितना लाभ हुआ और कितना नुकसान। श्राद्ध कर्म तो करना आवश्यक था ही, जिसमें पग पग पर पैसे की जरूरत थी। उसकी माँ को भी पहले से इन समस्याओं का भान न था। वह तो पति के शव पर माथा टिकाए बिलख रही थी। आए हुए सगे संबंधी भी रोनी सूरत बनाए बैठे थे। वैसे भी किसी ने सहायता की आशा न थी। यद्यपि धर्माराव की उम्र कच्ची थी मगर परिस्थिति को वह गहराई से समझ रहा था। एक क्षण के लिए उसे अपनी स्थिति ऐसी लगी मानो आगे कुआं हो और पीछे खाई। धीरे धीरे दिन चढ़ाया। अचानक उस असहाय स्थिति में धर्माराव को एक संबल मिला। हुआ यह कि शास्त्री जी के देहांत की खबर कृष्णम नायडू को भी मिली। खबर सुनते बूढ़े जमींदार जहाँ का तहाँ गढ़ से गए। एक क्षण के लिए जमींदार के स्मृति पटल पर रामेश्वर शास्त्री के असीम वैभव के दिन, उनका महान व्यक्तित्व, उनकी अपूर्व उदारता एक एक कर सभी झलक आए गए। वे अपनी कोठी से निकलकर शास्त्री जी के घर पहुंचे। शास्त्री जी का शव देखकर और भी दुखी और विगलित हो उठे। फिर थोड़ा संभल कर उन्होंने धर्माराव को सांत्वना दी और वहां जमे हुए बंधु बांधवों से श्राद्ध कर्म शुरू करने का अनुरोध किया। जमींदार के इस अनुरोध से सगे संबंधी यह समझ गए कि आर्थिक उत्तरदायित्व उनके सिर पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने भी बढ़ बढ़ कर काम करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता था मानो रामेश्वर शास्त्री के साथ उनकी दरिद्रता भी समाप्त हो गई हो। देखते देखते जमींदार की कोठी से चावल, दाल, नमक आदि सभी सामान आ पहुंचा। जमींदार ने नकद 200 रुपये भी भेजे। धर्माराव के मामा और ससुर गंगाधर दोनों ने क्रियाकर्म का भार संभाला। गंगाधर की दृष्टि से आत्मगुणों की अपेक्षा संस्कारों का महत्व अधिक था। उनका अनुरोध था कि श्राद्ध कर्म यथाविधि होना चाहिए। उनके नेतृत्व में शास्त्री जी का अपर कर्म सांगोपांग संपन्न हुआ। गोदान, विषोत्सर्जन, षोडश दान, ब्राह्मण भोज, दक्षिणा आदि सभी विधियां जमींदार की कृपा से संपूर्ण हुई। भोजन से तृप्त होकर ब्राह्मण कहने लगे, शास्त्री जी का क्या पूछना, वे महाराजा थे महाराजा। अंतिम दिनों में उन्हें थोड़ा कष्ट अवश्य सहना पड़ा, लेकिन सच पूछो तो वे जीते जी भी महाराज थे और मरकर भी महाराज ही रहे। धर्माराव के रिश्तेदारों ने बीते 13-14 दिनों में कोठी से आया हुआ सारा सामान जी भर कर खर्च किया। जितना खाया उतना फेंका भी। सामान भी खूब फिजूल खर्ची हुई। श्राद्ध कर्म के लिए आया हुआ सामान बचना नहीं चाहिए यह सोचकर कुछ बुढ़ियाओं ने भी जहां तक बन सका सामान को चोरी से अपने अपने घर पहुंचाया। कामकाज में व्यस्त धर्माराव और उसकी दुखिया माँ को इसका पता भी न चल पाया। धर्माराव की बहनें भी अपनी माँ के साथ रोती रहीं। 13वें दिन जब सब लोग विदा हुए, सावित्री देवी ने घर में देखा कोई 10 दिन का चावल बचा था। घी आदि और चीजें बची नहीं। शास्त्री जी का यह सौभाग्य ही था कि किसी तरह उनका श्राद्ध कर्म ठीक से संपन्न हो गया। अब अभागे बच रहे। अन्य रिश्तेदार तो सब चले गए, लेकिन धर्माराव की दो बहनें, जीजा और उनके बच्चे रुके रहे। पिता की जायदाद पुत्र को मिलना न्याय संगत है, इसीलिए रामेश्वर शास्त्री की छोड़ी हुई जायदाद अर्थात दरिद्रता तुरंत धर्माराव को मिल गई। यद्यपि धर्माराव की दयनीय परिस्थिति स्पष्ट दिख रही थी, लेकिन उसके जीजा यहाँ से जाने का नाम न लेते थे। दिन भर बैठे बैठे रामेश्वर शास्त्री की आलोचना करते और धर्माराव की भी निंदा किया करते। इतना ही नहीं, पग पग पर इस बात पर झगड़ा भी करते कि यहाँ उनकी आवभगत ठीक ठीक नहीं हो रही है। धर्माराव की बड़ी बहन का नाम हेमवती था और दूसरी बहन का नांचारम्मा। बड़े जीजा का नाम सूर्य नारायण था और दूसरे का राजेश्वर। बड़ी बहन की तीन लड़कियां थीं, छोटी के एक बेटा था। बड़े जीजा की आर्थिक स्थिति विशेष खराब थी, इसलिए उन्हीं के कारण अधिक परेशानी थी। और फिर आदमी भी वह बड़ा तुनक मिजाज था। एक दिन खाने में सब्जी नहीं मिली तो सूर्य नारायण ने हंगामा मचा दिया। यह देखकर धर्माराव झल्ला कर बोला, यह क्या हंगामा है, किसके बाप का माल यहाँ रखा है जो इतना शोर मचाते हैं। मेरे पिता भूखों मर रहे थे, तब किसी ने इधर झांक कर नहीं देखा, अब सबके सब आधम के हैं और मेरे सिर पर सवार हो रहे हैं, कहाँ से लाकर खिलाऊंगा इन्हें। उसकी झल्लाहट सुन सूर्यनारायण भी तेज होकर बोले, भूखे कंगाल को इतनी अकड़ क्यों। धर्माराव ने भी तुनक का जवाब दिया, किसी कंगाल ने मुझे तो कुछ दिया नहीं है। उसकी इस बात ने असर कर दिखाया। सुनते ही सूर्य नारायण आग बबूला हो उठा, दिन भर सभी को सैकड़ों गालियां देता रहा और उसी शाम अपने परिवार के साथ विदा हुआ। कल ही त्रैपाक्षिक श्राद्ध करना है, उधार लाए हुए सामान से आज तक गृहस्थी चली, लेकिन अब कोई फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं। धर्माराव को सूझ नहीं रहा था कि श्राद्ध कैसे संपन्न होगा। जमींदार ने भी पहले जो भेजा था सो भेजा था, उसके बाद उन्होंने भी कुछ खबर न ली। कर्ज देने वालों ने भी अब पिता के स्थान पर पुत्र को पकड़ना शुरू कर दिया। धर्माराव ने फिर एक बार जमींदार से मिलना चाहा। 13 वर्ष की आयु तक वह बड़े वैभव में पला था। बचपन से ही उसकी धारणा हो चली थी कि वह अमीर है। स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, उदारता, दातृत्व, क्रोध, अहंकार आदि पिता के सारे गुण धर्माराव में पूरे पूरे उतरे थे। वह मुंह खोलकर किसी से कुछ मांग नहीं सकता था। अपनी बेबसी पर उसे स्वयं घृणा होने लगी। बात बात पर वह माँ पर झल्ला उठता। अंततः किसी तरह अपने को समझाकर जमींदार के पास गया। कोठी में घुसते ही रंगाराव के दर्शन हुए। उसे देखते ही रंगाराव ने नाक भौं चढ़ाकर मुंह फेर लिया। धर्माराव को ऐसा लगा मानो किसी ने उसे चाबुक लगाई हो। वहीं से उसने लौट जाना चाहा, पर घर लौटकर भी क्या करता। धनवान लोग अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं। यही कारण था कि यदि धर्माराव को कोई कंगाल कहकर गाली देता तो धर्माराव उस दिन खाना भी न खाता। इतने धनवान पिता के पुत्र को ऐसी गाली सहन भी कैसे हो। रामेश्वर शास्त्री ने अगर पहले समझदारी से काम लिया होता तो धर्माराव के मन में इस प्रकार के मिथ्या गौरव का भाव जोर न पकड़ पाता। परंतु स्थिति में कायापलट के कारण जो असंभव था वही आज संभव बन बैठा। धर्माराव असमंजस में पड़ा थोड़ी देर वहीं खड़ा रहा। किसी ने उसके आने का कारण न पूछा। इतने में सौभाग्य से कृष्णम नायडू स्वयं किसी काम से उधर आए। धर्माराव उनके पास गया। नायडू ने धर्माराव से आने का कारण पूछा। क्या कारण बताता, क्या जमींदार स्वयं नहीं जानते। पैसे वालों को गरीबों की सही बातें ज्ञात होती हैं। धर्माराव चुप रहा। थोड़ी देर बाद नायडू ने फिर वही सवाल किया। धर्माराव मानो अधमरा होकर बोला, कल पिताजी का मासिक श्राद्ध है। तुरंत नायडू ने कारकुन को बुलाकर कहा, इन्हें 10 रुपये दे दो। फिर वे वहाँ से चले गए। रंगाराव यह सब सुन रहे थे। जब कारकुन धर्माराव को 10 रुपये देने लगा, रंगाराव ने टोक कर पूछा, क्यों मासिक श्राद्ध के लिए 10 रुपये लगते हैं। कारकुन बोला, नहीं महाराज, 10 रुपये की आवश्यकता नहीं। और अंत में धर्माराव के हाथ लगे कुल 6 रुपये। एक बार तो उसके मन में आया कि खाली हाथ ही लौट जाए, लेकिन प्रश्न यदि उसका अपना होता तो भूख से मरने को भी वह तैयार था। प्रश्न था पिता के श्राद्ध का, जिसे अपमान सहकर भी यथाविधि संपन्न करना उसका कर्तव्य था। रुआसा होकर वह 6 रुपये लेता हुआ घर लौटा। श्राद्ध समाप्त हुआ पर गृहस्थी का चलना कठिन हो गया। कर्ज की परेशानी भी बढ़ गई। एक दिन धर्माराव ने सोच समझकर कृष्णम नायडू के नाम एक लंबा पत्र लिखा। उसमें उसने अपनी राम कहानी का सविस्तार उल्लेख किया था। पत्र इस प्रकार था, महाराज श्रीमन सुल्तान जमींदार महाप्रभु कृष्णम नायडू जी की सेवा में रामेश्वर शास्त्री के पुत्र धर्माराव की नम्र विनती। महाशय, आपका मेरे पिताजी पर जो अव्याज स्नेह और प्रेम था उसे मैंने प्रत्यक्ष तो नहीं देखा, तथापि कई बार सुन चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारे परिवार पर आपकी विशेष कृपा है, इसी कारण यह पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। मेरे पिताजी के देहांत के समय तो आपने हमारी जो सहायता की, जो उदारता दिखाई, उसे मैं कभी नहीं भुला सकता। पिताजी के यश और उनके दिव्य गुणों का यहाँ उल्लेख करने से कोई लाभ नहीं। वह सब एक बीती कहानी है। जब पिताजी को ही अंतिम दिनों में कष्ट सहने पड़े तो मेरा कष्ट सहना कोई अचरज की बात नहीं, परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि पिताजी के लिए हुए कर्जे के कारण मुझे क्यों कष्ट सहने पड़ रहे हैं। हाँ, कारण यही हो सकता है कि यदि पिताजी कोई संपत्ति छोड़ जाते तो मैं उसका उपभोग करता, अतएव उनके छोड़े हुए ऋण का भार भी मुझे उठाना होगा। परंतु मैं छोटा हूँ, ऐसा लगता है कि हमारी जायदाद मात्र हमारे कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त है, परंतु ऋणदाता मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। वे मुझे इस ऋण से मुक्त होने देना नहीं चाहते। यदि ऋण मुक्त हो भी जाऊं तो आजीविका का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। सुदीर्घ काल तक महान वैभव का उपभोग करके आज दुर्दैव के कारण मेरी माँ अचानक कष्टों के सागर में डूब सी रही हैं। उनकी दशा देखने के लिए मुझे पत्थर का हृदय चाहिए। न जाने इन मुसीबतों का अंत कब होगा। लोग कहते हैं कि आप और हम इस गांव के पूर्वज हैं। कहा जाता है कि मेरे पूर्वज ही आपके पूर्वजों को यहाँ ले आए थे। मैं नहीं जानता कि यह कहाँ तक सत्य है। यदि यह सत्य है तो आपके और हमारे वंशों में एक अटूट संबंध है। इस संबंध के नाते भी आप मुझ पर कृपा कर सकते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, मेरे किसी पूर्वज ने आपसे याचना नहीं की। एक मैं ही ऐसा कर रहा हूँ। यह बात आपकी कृपा का हेतु बने, यही मेरी विनती है। धर्माराव ने यह पत्र कोठी के एक नौकर के हाथ भिजवा तो दिया, लेकिन उस रात उसके मन क्षोभ की सीमा न रही। सोचने लगा, धिक्कार है मुझ पर जो किसी से याचना करने चला हूँ। जमींदार अपनी जगह बड़े हैं तो हम भी अपनी जगह कोई छोटे नहीं। जिन मुसीबतों को आना है वे आकर रहेंगी। हमें मरना है तो मरें, किंतु बराबर वालों के पास याचक बनकर क्यों जाएं। वह फिर सोचने लगा, मैं कोई पहली बार कृष्णम नायडू से याचना थोड़े ही कर रहा हूँ। अभी परसों ही 6 रुपये मांग लाया था। श्राद्ध कर्म का भी खर्च उन्हीं के पास से आया था, पर साथ ही यह भी सोचा, श्राद्ध कर्म के लिए उन्होंने खुद सहायता की, मैंने तो कोई याचना की नहीं थी। मासिक श्राद्ध के लिए मैंने कोई याचना नहीं की, स्वयं उन्होंने ही दिया। इस प्रकार मानसिक ऊहापोहों के बीच अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचा कि उसे वह पत्र नहीं भेजना चाहिए था। उसे लगा, पत्र भेजने से उसके पूर्वजों का गौरव जाता रहा। फिर उसके मन में यह आतुरता भी जगी कि कब सवेरा हो और कब वह नौकर से पत्र वापस ले ले। यह सोचकर वह घबरा रहा था कि कहीं नौकर ने रात ही में पत्र जमींदार साहब के पास पहुंचा न दिया हो। इसी उधेड़बुन में भोर हो गई। मुर्गों ने गर्दनें तानी और देह को लंबा करके बांग देना शुरू किया। फिर वे अपने पंखों को फड़फड़ाने लगे, मानो अपने गर्व पर लज्जित हो रहे हों। इतने में गर्व और अहंकार, सुख और दुख, संपत्ति और विपत्ति, इन सभी द्वंद्वों को समभाव से देखने वाली साक्षीभूत सनातन उषा चमक उठी। धर्माराव ने झटपट उस नौकर के पास जाकर पूछा, तुमने पत्र जमींदार साहब को दिया? नौकर ने कहा, नहीं। धर्माराव ने नौकर से पत्र वापस लेकर उसके सामने ही फाड़ डाला। नौकर आश्चर्य से पूछने लगा, पत्र क्यों फाड़ दिया? धर्माराव बोला, गोपन्ना, यह सच है कि बड़े जमींदार साहब अत्यंत उदार हैं, परंतु मेरे पूर्वजों ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था, सो अब मैं ही क्यों मांगूं। गोपन्ना कुछ न बोला। घर लौटते समय धर्माराव को ऐसा लगा कि उसे देखकर सब लोग हंस रहे हैं। उस दिन धर्माराव की हालत और उसकी गतिविधियां अजीब सी थीं। बड़े बड़े असमंजस में पड़ा था वह। कभी सोचता कि ठीक ऐसे समय जबकि उसके कष्टों का अंत होने को था, उसने स्वयं अपने सौभाग्य से मुंह मोड़ लिया है। यह सोचकर उसे बहुत पछतावा हुआ, पर दूसरे ही क्षण वह सोचने लगा, नहीं, जो कुछ उसने किया बहुत अच्छा किया। उसे इस उधेड़बुन में पड़ा देखकर उसकी माँ को बड़ी चिंता होने लगी। ज्यों त्यों करके 10 दिन बीते। एक दिन धर्माराव के घर आते ही माँ ने कहा, चावल नहीं है। सुनते ही उसे लगा कि दरिद्रता उसके स्वाभिमान की हंसी उड़ा रही है। वह किसी से 2 रुपये उधार मांगने लगा। लोगों ने आजकल कहकर टाल मटोल की और अंत में इनकार ही कर दिया। दरिद्रता उसे देखकर विकृत हास करने लगी। अंत में माँ ने कहा, बेटा, जमींदार साहब से मांगो, शायद कुछ दे दें। दरिद्रता ठहाका मारकर हंस पड़ी। धर्माराव को अपने मन का बहुत गहरा आक्रंदन सा सुन पड़ा। उसे इस बात पर संतोष हुआ कि वह आक्रंदन किसी और को सुनाई नहीं दिया। नौकर गोपन्ना 60 वर्ष का हो चला था। 30 वर्ष हुए। एक दिन रानी साहिबा ने भूलकर अपना चंद्रहार स्नान गृह में खूंटी पर रख छोड़ा था। उधर से गुजरते गोपन्ना ने उसे देखा और चुरा लिया। इस घटना की पूरी छानबीन की गई और गोपन्ना पकड़ा गया। कृष्णम नायडू ने उसे कोठी से निकाल दिया। गोपन्ना रामेश्वर शास्त्री की शरण आया और शास्त्री जी ने किसी तरह फिर से उसकी नियुक्ति कोठी में करवा दी। उस दिन से गोपन्ना शास्त्री जी का अत्यंत आभारी बन गया। कभी कभी वह शास्त्री जी के पास जाता और कुछ अच्छी बातें सीखने की चेष्टा करता। स्वभाव से आदमी अच्छा था ही, अतएव उसके मन में धीरे धीरे भक्तिभाव का संचार होने लगा। वह प्रतिदिन मंदिरों में जाता और भगवान के दर्शन करता। वृद्धावस्था में कृष्णम नायडू के मन में भी गोपन्ना के प्रति स्नेह जागा। गोपन्ना सदा पुरानी गाथाएँ और भक्ति की बातें सुनाता रहता। एक दिन जब बूढ़े जमींदार स्नान करके लौटे, गोपन्ना उन्हें तिलक लगाने लगा। तिलक लगाते लगाते गोपन्ना ने धर्माराव की बात छेड़ी। धर्माराव का पत्र लिखकर उसे देना, फिर दूसरे दिन उसे फाड़कर फेंकना और कारण पूछने पर उसका स्वाभिमानपूर्ण वक्तव्य, यह सारा वृतांत गोपन्ना ने जमींदार को कह सुनाया। फिर वह कहने लगा, मालिक, उन लोगों को भी कैसे कैसे दुर्दिन देखने पड़ रहे हैं। आखिर हींग बंधे कपड़े की बास कहाँ जाएगी? शेर के पेट से बकरी भला क्यों जन्मेगी? उनके वंश में घटिया आदमी क्यों पैदा होगा? जमींदार साहब भोजन कर रहे थे और गोपन्ना परोस रहा था। सारे पदार्थ अत्यंत रुचिकर बने थे। जमींदार साहब चाव से खा रहे थे। उनकी अनुकूल मनस्थिति पहचान कर गोपन्ना परोसते परोसते बीच बीच में धर्माराव के विषय में बातें कर रहा था। कह रहा था, बेचारे रामेश्वर शास्त्री ने किसी बुरे काम में तो पैसा खर्च नहीं किया था। जिस किसी ने मांगा उन्होंने जी खोल कर दिया। जो उनका पैसा खा चुके थे वे ही उनके बैरी बने। लोगों ने जिस स्तन से दूध पिया उसी पर घूंसा लगाया। नागन्ना शेट्टी और श्री रामुलू शास्त्री जी की दया पर बड़े हुए, पर आज वे ही सरदार बनकर धर्माराव की नाकों दम कर रहे हैं। गोपन्ना ने जमींदार के हाथ धुलाए, पोंछे और उन्हें कुर्सी पर बिठाया। फिर पान लगाता हुआ कहने लगा, मालिक, आप धर्माराव को कोई रास्ता नहीं दिखाएंगे तो उस लड़के का क्या होगा? उस पर अगर विपत्ति आ पड़े तो हमारी भी कुशल कहाँ होगी? लोग कहते हैं आप, शास्त्री जी, सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी और गणाचारी चारों एक ही सूत्र में बंधे हैं। आप लोगों में वैमनस्य नहीं आना चाहिए। भगवान भी चाहते हैं कि आप धर्माराव की सहायता करें। जमींदार साहब झूले पर लेट गए। गोपन्ना उन्हें झुलाने लगा। जमींदार साहब ने कहा, गोपन्ना, धर्माराव बड़ा सुंदर दिखता है रे। गोपन्ना कहने लगा, क्या बताऊं मालिक, उनका चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है कि मोतियों के फूल खिले हैं। मैं तो मानता हूं मालिक, यह लड़का अवश्य सुब्रह्मण्येश्वर का अवतार है। वह छरेरी काया, वह चमकीला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, तेजस्वी मुखमंडल, सच सुंदरता है तो उसी की। पर क्या कहा जाए, समुद्र सूख कर तालाब बन गया। शास्त्री जी के हाथ में हड्डी नहीं थी, उन्होंने कभी किसी को ना नहीं कहा था। हाथ में हड्डी न होना यानी अत्यंत दानशीलता का लक्षण है। कुछ समय बाद माघ का महीना आया। नागन्ना शेट्टी ने अपने पुत्र का ब्याह तय किया। माहवार वेतन पाने वाला हो या व्यापारी, सभी को जमींदार के पास जाना पड़ता है। विवाह मंडप के लिए ताड़ के पत्ते, जुलूस के लिए हाथी, ऐसी कई सुविधाओं के लिए शेट्टी को ही जमींदार के पास जाना पड़ा। दशमी को मुहूर्त था। द्वितीया को शेट्टी जमींदार के सामने हाजिर हुआ। शाम का समय था। जमींदार साहब उस समय ऊँटों और हाथियों का पर्यवेक्षण कर रहे थे। शेट्टी ने जाकर नमस्कार किया और इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि जमींदार साहब उसके आने का कारण पूछें। कृष्णम नायडू ने कहा, शेट्टी जी, देखिए, इन ऊँटों को बार बार देखकर ही मुझे अचरज होता है। जानवरों में ऊँट और कीड़ों में घास का कीड़ा विचित्र होते हैं। लंबी टांगे और लंबी गर्दन, जैसे सिर और धड़ में कोई संबंध ही न हो। शेट्टी तपाक से बोला, जी हाँ जी हाँ। शेट्टी की समझ में नहीं आया कि जमींदार साहब क्या कह रहे हैं। शेट्टी केवल अधिक मास, चक्रव्याज, तिथिद्वय आदि बातें भलीभांति जानता था और बातें उसकी समझ के बाहर थी। कृष्णम नायडू के मन का सौकुमार्य शेट्टी को कहाँ से प्राप्त होता, इसी से वह जी हाँ कहकर चुप हो गया। नायडू, अच्छा शेट्टी जी, रामेश्वर शास्त्री पर आपका कितना कर्ज है? शेट्टी जी, 25,000। नायडू, उनके घर, कोठे आदि की कीमत क्या होगी? शेट्टी जी हाँ जी हाँ। नायडू, शास्त्री जी पर औरों का कुल कितना कर्ज होगा? शेट्टी जी, और 25,000 होगा। नायडू, अच्छा, कल सवेरे सारे कर्जदारों को लेकर तुम मेरे पास आना। कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, बेचारा वह लड़का बहुत परेशान है। शेट्टी जी हाँ जी हाँ। थोड़ी देर तक जमींदार साहब घुड़साल के पास खड़े रहे और भीतर चलने लगे। शेट्टी को मालूम था कि जमींदार साहब फिर बाहर नहीं आएंगे, इसलिए उसने हाथ मलते हुए कहा, सरकार से कुछ काम है। नायडू बोले, कल उन सबको ले आइए, फिर आपका काम देखेंगे। शेट्टी जमींदार साहब के स्वभाव से परिचित था। अपने मन की बात पूरी होने पर ही वे किसी और की बात मानते थे। शेट्टी के घर में सब लोगों की इच्छा थी कि शादी में उसका बेटा हाथी पर सवार होकर बारात में निकले। शेट्टी सोचने लगा, जब तक रामेश्वर शास्त्री के कर्ज का निपटारा न होगा मुझे हाथी नहीं मिलेगा। धर्माराव को अधिक सताने से मुझे कुछ अधिक मिलने की संभावना भी नहीं। ऐसा सोचकर शेट्टी दूसरे दिन सारे ऋणदाताओं के साथ जमींदार साहब से जा मिला। बाकी ऋणदाता भी कुछ जमींदार के भय से और कुछ शेट्टी की देखा देखी मान गए। जमींदार ने गांव के पटवारी को बुलवाया और उसकी सहायता से शास्त्री जी की जायदाद का पता लगाकर ऋणदाताओं में उसका यथा योग्य बंटवारा करवाया। जायदाद के सारा कर्ज चुकाया गया, परंतु जमींदार साहब की इच्छा थी कि कम से कम धर्माराव के लिए मकान बचा रहे। एक ऋणदाता इस पर राजी न हुआ। जमींदार साहब को अंत में मान लेना पड़ा। कागज पत्र लिखे गए और दूसरे दिन रजिस्ट्रेशन करवाने का निर्णय हुआ। तब तक धर्माराव को इस बात का पता ही न था। जमींदार साहब ने उसे खबर भेजी कि निर्णय के अनुसार कल जायदाद का रजिस्ट्रेशन करवा देना। यह खबर सुनकर धर्माराव को ऐसा लगा मानो रेगिस्तान में प्यासे मुसाफिर को नारियल का पानी मिल गया हो। रात को बड़ी देर तक माँ बेटे जमींदार का गुणगान करते रहे। धर्माराव को नींद नहीं आ रही थी। उसकी स्मृति में रह रहकर जमींदार साहब की उदारता बिजली के समान कौंधती रही। सोचते सोचते उसे लगा कि इस उपकार में गोपन्ना का हाथ अवश्य होगा। यह विचार आते ही उसका सारा आदर भाव गोपन्ना पर जा पड़ा। मन में गोपन्ना के प्रति कृतज्ञता उमड़ गई। 4 महीने बाद आज धर्माराव मीठी नींद सोया। भोर होते होते वह गोपन्ना के घर जा पहुंचा और चबूतरे पर बैठ गया। गोपन्ना उसे देखकर पूछने लगा, क्यों बाबू इतने सवेरे कैसे आए? धर्माराव बोला, गोपाल तुम्हारा कर्ज मैं नहीं चुका सकूंगा। सचमुच तुमने जो काम किया है वह मेरा पत्र भी नहीं कर पाता। तुम्हारा आभार मानने आया हूँ। गोपन्ना बोला, बाबू आप बड़े घर के लड़के हैं, मेरे बारे में ऐसा ना कहिए। आपके पिताजी ने जो उपकार मुझ पर किया था उसकी तुलना में मेरी छोटी सी सेवा का मूल्य ही क्या है। थोड़ी देर बातें करके धर्माराव घर लौटा। उस समय सूर्योदय हो रहा था। धीरे धीरे रोदसी पर दिन लक्ष्मी का प्रकाश फैलने लगा, मानो उसके मुख पर मंदहास फूट पड़ा हो, मानो लीपे हुए घर में कोमल किरणों से रंगोली सजाई गई हो, मानो हृदय में उदित आनंद विचित्र गति से मुख पर फैल गया हो। कोठी के सामने नगाड़ों की मीठी गूंज सुन पड़ी। कोठी के भीतर पालतू मोरों ने पूंछ खोलकर नाचना शुरू किया। शायद उसने नगाड़ों की आवाज़ को बादलों की गरज समझ लिया होगा। द्वार पर पहरा देने वाला दरबान गेहूं रंग की धोती पहने, ललाट पर तिरुचूर्ण का तिलक लगाए, किसी राजा की प्रसन्नता सा दिख रहा था। तिरुचूर्ण अर्थात हल्दी और चावल मिलाकर पीसा हुआ चूर्ण, जिससे वैष्णव लोग तिलक लगाते हैं। रात को कृष्णम नायडू ने स्वप्न देखा था। सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी उन पर प्रसन्न दृष्टि का प्रसार करते हुए शैया के पास पूंछ के बल खड़े थे। जमींदार साहब जागकर इस स्वप्न की व्याख्या सोचने लगे। जब जमींदार कोई ऐसा काम करते तो जो भगवान को प्रिय हो तो सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी उनको स्वप्न में प्रसन्नाकृति से दर्शन देते। जब कोई अप्रिय कार्य जमींदार कर बैठते तो स्वामी भयंकर भूत कार्य करते हुए स्वप्न में दीख पड़ते थे। कृष्णम नायडू को आज दूसरी बार स्वप्न के दर्शन हुए थे। पहली बार तब हुए थे जब वे 6 वर्ष के मनमुटाव के बाद रामेश्वर शास्त्री से जा मिले थे। जमींदार की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। दूसरे दिन संध्या समय कृष्णम नायडू स्वामी के दर्शन करने गए। वहां धर्माराव से भेंट हुई। दोनों ने मिलकर स्वामी के दर्शन किए। पहले नागेश्वर स्वामी के मंदिर में गए, परिक्रमा की और घंटा बजाकर खड़े हो गए। सोने के लिंग पीठ पर रखे बिल्व पत्र मूर्ति के पस्तक पर मरकत कांति फैला रहे थे। भगवान ऐसे प्रसन्न थे मानो उनके समान धनवान और कोई न हो। ओहो, इन स्वामी की कौन कला कौन नहीं जानता। कल तक दरिद्र थे, आज सुब्रह्मण्येश्वर के जमींदारों के आश्रय में आकर रामेश्वर शास्त्री के बनवाए हुए गहने पहनकर बहुत इतरा रहे हैं। जमींदार और धर्माराव ने देवी के दर्शन किए। पुजारी रुद्रपाद लेकर पहले जमींदार साहब की ओर बढ़ा। रुद्रपाद शिव जी के चरण, जिन्हें भक्तों के मस्तक पर टिकाया जाता है। जमींदार चिहुक कर पीछे हट गए और पुजारी को उन्होंने पैनी दृष्टि से देखा। पुजारी उनका भाव समझ गया और बड़े विनय से धर्माराव को पहले रुद्रपाद दिए, उसके बाद जमींदार ने स्वीकार किए। शुक्रवार की पूजा में देवी पर चढ़ाया हुआ कुमकुम कुछ नीचे खिसक गया था। देवी मंदहास करती खड़ी थीं। जमींदार और धर्माराव विभूति और बेलपत्र नंदीश्वर के सिर पर रखकर मुखमंडप में थोड़ी देर बैठे रहे और फिर ध्वज स्तंभ के पास आए। शुक्लाष्टमी की चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी शिव की महत्ता से ओतप्रोत थी, मानो शिव जटा में रमण करती मंदाकिनी की नवस्मितमयी तरंगों की रमणीयता हो, मानो देवी पार्वती की प्रसन्न अपांग रेखा का प्रसार हो, मानो विघ्न विनायक के एक दंत की सिद्ध छटा की निर्मल कांति हो। उस चांदनी में ध्वजस्तंभ की सुनहरी चादर ऐसी चमक रही थी मानो शिव सानिध्य में चमकने वाले वाली रामेश्वर शास्त्री की भक्ति हो। उसे देखकर जमींदार साहब का मन पुलकित हो उठा। ध्वज स्तंभ के पास से दोनों सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर में गए। जमींदार साहब को स्वामी की वही प्रसन्न मूर्ति दिख पड़ी जो कल रात उनके स्वप्न में आई थी। जिस प्रकार एक धर्म के आधार पर हजार संस्थाएं स्थापित हुई हैं, उसी प्रकार स्वामी ने एक शरीर पर सहस्र शीर्ष प्रकाशमान थे। स्वामी के शीर्ष निश्चल थे, तथापि ऐसा लगता था कि तन्मयता में वे कुछ हिलडुल रहे हों, मानो निस्तरंग क्षीर सागर में आदि नारायण को वहन कर रहे हों। जिस प्रकार धर्म, उसका आचरण तथा उसका प्रचार तीनों एक होकर अभिन्न तादात्म्य को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार स्वामी, राजा तथा धर्माराव एक दूसरे से अभिन्न होकर वहां विराजमान थे। कई पीढ़ियों के उस प्राचीन अटूट तथा अनूठे संबंध का वे तीनों स्वयं भी अनुभव कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उनका वह संबंध उस दिन एक नए सामिप्य सूत्र से बंधा है। स्वामी के सामने खड़े जमींदार साहब को बराबर यह अनुभूति हो रही थी कि उनकी आत्मा में एक अनिर्वचनीय ज्ञान तरंग विद्यमान है और उस संध्या को उनका नया जन्म हुआ है। यह अनुभूति मन के सूक्ष्म स्तरों में समाती हुई उनके अंतस्थल में प्रवेश कर गई और वे भाव विभोर होकर आंखें बंद किए खड़े रहे। वहां से दोनों वेणुगोपाल स्वामी के मंदिर गए। पहले पांव धोने के लिए मंदिर की तलैया पर पहुंचे। संगमरमर की सीढ़ियां उतरते समय कृष्णम नायडू को रामेश्वर शास्त्री के यज्ञ का स्मरण हो आया। फिर दोनों ने मंदिर की परिक्रमा की और भीतर जाकर घंटा बजाया। वेणुगोपाल स्वामी जमींदारों के गृह देवता थे। स्वामी के प्रार्थना श्लोक जमींदारों को अवश्य याद रहते थे। कृष्णम नायडू ने वे श्लोक पढ़े। वहां रखे हुए टिमटिमाते दिए को पुजारी ने बत्ती उकसाकर प्रज्वलित किया। स्वामी का कवच सहसा चमकने लगा। आहा, रामेश्वर शास्त्री स्वयं इस कवच के रूप में स्वामी के शरीर से सटे हुए हैं। जमींदार ने सोचा, मैं ही स्वामी से दूर हूँ। स्वामी की मूर्ति का डील डॉल मनुष्य के बराबर था। पुजारी प्रतिदिन स्वामी के शरीर पर तिल का लेप किया करता था। वह शरीर काले बादलों की स्निग्ध छाया की भांति नए काजल की कांति प्रसारित कर रहा था। स्वामी के मुख कमल पर चिपकाए गए रजत माणिक्यमय ऊर्ध्वपुंड गोलोक के द्वार की भांति और स्वामी की ओर भ्रकुटी तान कर परिहास पूर्वक देखने वाली राधिका की भावों के बीच त्रिरेखाकृति भक्तजनों को निरंतर आह्लाद प्रदान कर रही थी। ऊर्ध्वपुंड वह खड़ा टीका जो वैष्णव लोग लगाते हैं। स्वामी की मूर्ति त्रिभंगी मुद्रा में गढ़ी गई थी। उनकी बगल में सत्यभामा देवी की श्रृंगारमय मूर्ति थी। दाएं हाथ में लीला कमल धारण किए स्वामी से सटी खड़ी थी। धर्माराव का कंठ स्वर वीणा के निकोण सा था। आधी पहर रात बीत चुकी थी, वातावरण निस्तब्ध था। धर्माराव गाने लगा, मंदम मंदम मधुर निनयदह वेणुमा पूर्यंतम। ऐसा लगा कि उसके कंठ से निकलते मधुर निनाद से ही स्वामी की बांसुरी भर रही है। स्वामी अपनी बांसुरी बजा रहे थे, वृंदम वृंदावन भुवि गवाम चारयंत चरंतम। वेणुगान के प्रवाह में स्वामी केवल भक्तों को नहीं डुला रहे थे, स्वयं भी डोल रहे थे। छंदो भागे शतमख मखध्वंसिनाम दानवानाम हंतारम। आहा, कैसा अपूर्व वेणुनाद है। यह वेदमय नाद वृंदावन की चतुर राशाओं में फैलकर गोपियों के मन में चतुर आशाओं के संचार का कारण बन रही है। चतुर राशा चारों दिशाओं में वाक्य में श्लेष का प्रयोग है। तम कथय रसने गोप कन्या भुजंगमम। कैसे लीलामय है स्वामी। अभी अभी वेदों के बीच शतमख इंद्र के मखों का ध्वंस करने वाले दानवों का वध कर रहे थे, इतनी ही देर में गोप कन्याओं के रसिया कैसे बन गए, कहाँ से कहाँ आ गए जरा भी देर में। हाँ हाँ, वे भुजंग ही हैं, इसी से वेणु नाद के मिस्फोत्कार कर रहे हैं। रामेश्वर शास्त्री के बनवाए हुए बुलाक की ओट से सत्यभामा देवी स्वामी की चपलता का मंदहास कर रही हैं। ध्यान का श्लोक पूरा होते ही धर्मराव को सुधि आई। जमींदार साहब अपने दोनों हाथ से उसे संभाले हुए थे। उनकी आंखों में एक अपूर्व तथा असीम प्रकाश विद्यमान था और वे स्वामी की ओर एकटक देख रहे थे। धर्माराव ने धीरे से कहा, बाबूजी, उसने जमींदार साहब को इस नाम से कभी नहीं पुकारा था। जमींदार साहब ने उसे अपने पास खींच लिया और कहा, मेरे लाल, भगवान के निश्वासों से परिमल चुराकर सारे मंदिर को सुवासित करने वाले दो चंपक पुष्प लाकर पुजारी ने उन्हें दिए। उन फूलों को स्वामी का प्रसाद मानकर दोनों ने स्वीकार किया और बाहर चले आए। जमींदार साहब ने अपने हाथ धर्माराव के ऊपर से हटाए ही नहीं। दोनों ने थोड़ी देर विश्राम किया। पुजारी ने नारियल के टुकड़े और मिश्री मिलाकर उन्हें प्रसाद दिया। दोनों ने खाया। नागन्ना शेट्टी के घर में विवाह बड़े धूमधाम से हुआ। विवाह के चौथे दिन संगीत सभा हुई। सभा में जमींदार साहब को निमंत्रित किया गया था। कृष्णम नायडू और धर्माराव साथ साथ सभा में गए। आजकल वे कभी अलग नहीं रहते थे। सभा के अंत में शेट्टी ने पान सुपारी आदि लाकर पहले धर्माराव को दिया और फिर जमींदार साहब को देने लगा। जमींदार साहब ने कहा, मैं यह कोरी सुपारी लेकर क्या करूँगा। शेट्टी तपाक से बोला, सरकार जो कहेंगे अवश्य दूंगा। जमींदार ने पूछा, अपनी बात पर दृढ़ रहोगे। उत्साहवश शेट्टी ने मान लिया। जमींदार बोले, रामेश्वर शास्त्री का घर छोड़ दो। यह सुनते ही शेट्टी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे देखकर जमींदार बोले, मैं जानता था कि तुम आनाकानी करोगे, आखिर साहूकार हो न। उनके इन शब्दों से शेट्टी का आत्मसम्मान जाग उठा। वह बोला, नहीं सरकार, मैं मुकर नहीं रहा हूँ। जमींदार ने उसके मन का भाव ताड़ कर कहा, मुफ्त नहीं मांग रहा हूँ शेट्टी, वाजिबी कीमत दूंगा। कर्जों के निपटारे में शास्त्री जी का मकान शेट्टी के हिस्से में आया था। धर्माराव अभी तक उसी मकान में रह रहा था, परंतु कुछ ही दिनों में उसे छोड़ना अनिवार्य था। जमींदार ने शेट्टी को 5,000 रुपये दिए और मकान धर्माराव के नाम लिखवा दिया। धर्माराव मैट्रिक की परीक्षा में बैठकर एक बार अनुत्तीर्ण हुआ। वह बड़ा होशियार था, इसी से 15 साल की आयु में मैट्रिक तक पहुंचा। नियमानुसार उसकी आयु कम होने पर भी अध्यापकों ने विशेष अनुमति मंगवाकर उसे परीक्षा में भेजा। इसी बीच रामेश्वर शास्त्री की आर्थिक स्थिति बिगड़ी। घर से ठीक समय पर पैसा न आने के कारण और कुछ अस्वस्थता के कारण धर्माराव परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया। इस वर्ष तो पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। धर्माराव ने निश्चय किया कि छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर फिर से पढ़ने जाएगा। हर महीने कृष्णम नायडू से पैसा दिया करते थे। प्रतिदिन सवेरे उठकर जमींदार साहब धर्माराव के घर आते, फिर दोनों मिलकर बाग में जाते और भोजन के समय लौटते। उसके बाद धर्माराव कोठी पर जाता, वहाँ महाभारत या भागवत का पाठ करता। जमींदार साहब बड़ी श्रद्धा से सुनते। यही उनकी दिनचर्या थी। यह दिनचर्या रंगाराव को खल रही थी। कभी कभी गोपन्ना हंस पड़ता तो रंगाराव बिगड़ कर कहते, इस नौकर का घमंड बढ़ गया है। यह सुनकर गोपन्ना चुप हो जाता। धर्माराव बड़े जमींदार साहब और गोपन्ना एक दूसरे की ओर देखते, फिर धर्माराव पढ़ने लगता। रंगाराव की दृष्टि में तीनों बूढ़े खुसट थे। 16 बरस वाला धर्माराव ही बूढ़ा खुसट था। यह दिनचर्या स्कूल खुलने तक चलती रही। स्कूल खुलते ही जमींदार साहब ने धर्माराव को पढ़ाई के लिए भेज दिया। सुवन्नापेट से विजयवाड़ा करीब था, फिर भी जमींदार साहब ने धर्माराव को मछलीपट्टनम में पढ़ाया। इससे पहले भी धर्माराव वहीं पढ़ा था। जब वह छुट्टियों में सुवन्नापेट आता तो उनकी वही पुरानी दिनचर्या चलती। सवेरे बाग में जाना, दोपहर को पुराण पाठ और सायंकाल मंदिर में स्वामी के दर्शन। जब धर्माराव पढ़ने चला जाता तो कृष्णम नायडू बाग में नहीं जाते थे। इसी प्रकार 4 वर्ष बीत गए। धर्माराव ने मैट्रिक पास किया, FA पास किया और अब BA के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया। स्कूल बंद होने से के 2 महीने पहले एकाएक समाचार पत्रों में खबर छपी कि सुवन्नापेट के जमींदार कृष्णम नायडू स्वर्गस्थ हो गए हैं। यह पढ़कर धर्माराव पर बिजली सी गिरी। समाचार पत्र छोड़कर वह जोर जोर रोने लगा। उसके सहपाठी जानते थे कि उसका जमींदार से कितना घनिष्ठ संबंध है। उन्होंने उसे दिलासा दिया। गोरे प्रिंसिपल ने भी सांत्वना दी। धर्माराव को सुवन्नापेट आना पड़ा। दुखी और दीन मुद्रा से वह कोठी पर गया। वहाँ उससे किसी ने बात नहीं की। गोपन्ना को ढूंढने पर पता चला कि जमींदार साहब का स्वर्गवास होते ही यह एकाएक पागल होकर कहीं चला गया है। कोठी में अब धर्माराव के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया था। वहाँ का सूनापन जैसे उसे काटने को दौड़ने लगा। वह सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी के मंदिर में गया तो वहाँ भी उसे लगा कि स्वामी की मूर्ति दुख से परितप्त है। उसने सोचा, हे सर्पराज, तुम्हारी यह कैसी स्थिति हो गई है। फिर वह वेणुगोपाल स्वामी के दर्शन करने गया। पुजारी ने स्वामी को स्नान कराने के लिए आभूषण उतार दिए थे। स्वामी को देखकर धर्माराव विलख पड़ा। अंत में वह घर लौटा। उसे देखकर माँ रो पड़ी। धर्माराव की पढ़ाई वहीं रुक गई। कृष्णम नायडू का देहांत हुए 3 महीने बीत गए थे। ग्रीष्म उमड़ पड़ा। 3 महीने से धर्माराव यूं ही घर बैठा था। पुराने दुर्दिन फिर लौट आए, परंतु अब कर्ज की परेशानी न थी और सिर छिपाने को अपना घर ही बचा था। यह था वह धर्माराव जिसे बाजार में देखकर गणाचारी उसके पास दौड़ आई।